संख्या 133 अध्याय 25 उर्दू हिंदी और हिंदुस्तानी। यह बात सभी लोग मानते हैं कि राष्ट्र को दृढ़ और बलवान बनाने के लिए देश में सांस्कृतिक एकता का होना बहुत आवश्यक है और किसी राष्ट्र की भाषा तथा लिपि इस सांस्कृतिक एकता का एक विशेष अंग है। श्रीमती खलीदा अदीब खानम ने अपने एक भाषण में कहा था कि तुर्की जाति और राष्ट्र की एकता तुर्की भाषा के कारण ही हुई है और यह निश्चित बात है कि राष्ट्रीय भाषा के बिना किसी राष्ट्र के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं हो सकती। जब तक भारत वर्ष की कोई राष्ट्रीय भाषा न हो तब तक वह राष्ट्रीयता का दावा नहीं कर सकता। संभव है कि प्राचीन काल में भारत वर्ष एक राष्ट्र रहा हो परंतु बौद्धों के पतन के उपरांत उसकी राष्ट्रीयता का भी अंत हो गया था। यद्यपि देश में सांस्कृतिक एकता वर्तमान थी तो भी भाषाओं के भेद ने देश को खंड खंड करने का काम और भी सुगम कर दिया था। मुसलमानों के शासन काल में भी जो कुछ हुआ था उसमें भिन्न भिन्न प्रांतों का राजनीतिक एकीकरण तो हो गया था परंतु उस समय भी देश में राष्ट्रीयता का अस्तित्व नहीं था। और सच बात तो यह है कि राष्ट्रीयता की भावना अपेक्षाकृत बहुत थोड़े दिनों से संसार में उत्पन्न हुई है और इसे उत्पन्न हुए लगभग 200 वर्षों से अधिक नहीं हुए। भारत वर्ष में राष्ट्रीयता का आरंभ अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ साथ हुआ था और उसी की दृढ़ता के साथ साथ इसकी भी वृद्धि हो रही है। लेकिन इस समय राजनीतिक पराधीनता के अतिरिक्त देश के भिन्न भिन्न अंगों और तत्वों में कोई ऐसा पारस्परिक संबंध नहीं है जो उन्हें संगठित करके एक राष्ट्र का स्वरूप दे सके। यदि आज भारतवर्ष से अंग्रेजी राज्य उठ जाए तो इन तत्वों में जो एकता इस समय दिखाई दे रही है बहुत संभव है कि वह विभेद और विरोध का रूप धारण कर ले और भिन्न भिन्न भाषाओं के आधार पर एक ऐसा नया संगठन उत्पन्न हो जाए जिसका एक दूसरे के साथ कोई संबंध ही न हो और फिर वही खींचातानी शुरू हो जाए जो अंग्रेजों के यहाँ आने से पहले थी। अतः राष्ट्र के जीवन के लिए यह बात आवश्यक है कि देश में सांस्कृतिक एकता हो और भाषा की एकता उस सांस्कृतिक एकता का प्रधान स्तंभ है। इसीलिए यह बात भी आवश्यक है कि भारत वर्ष की एक ऐसी राष्ट्रीय भाषा हो जो देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक बोली और समझी जाए। इसी बात का आवश्यक परिणाम यह होगा कि कुछ दिनों में राष्ट्रीय साहित्य की सृष्टि भी आरंभ हो जाएगी और एक ऐसा समय आएगा जबकि भिन्न भिन्न जातियों और राष्ट्रों के साहित्यिक मंडल में हिंदुस्तानी भाषा भी बराबरी की हैसियत से शामिल होने के काबिल हो जाएगी। पृष्ठ संख्या 134। परंतु प्रश्न तो यह है कि इस राष्ट्रीय भाषा का स्वरूप क्या हो। आजकल भिन्न भिन्न प्रांतों में जो भाषाएं प्रचलित हैं, उनमें तो राष्ट्रीय भाषा बनने की योग्यता नहीं क्योंकि उनके कार्य और प्रचार का क्षेत्र परिमित है। केवल एक ही भाषा ऐसी है जो देश के एक बहुत बड़े भाग में बोली जाती है और उससे भी कहीं बड़े भाग में समझी जाती है और उसी को राष्ट्रीय भाषा का पद दिया जा सकता है। परंतु इस समय उस भाषा के तीन स्वरूप हैं: उर्दू, हिंदी और हिंदुस्तानी, और अभी तक यह बात राष्ट्रीय रूप से निश्चित नहीं की जा सकी है कि इनमें से कौन सा स्वरूप ऐसा है जो देश में सबसे अधिक मान्य हो सकता है और जिसका प्रचार भी सबसे ज्यादा आसानी से हो सकता है। तीनों ही स्वरूपों के पक्षपाती और समर्थक मौजूद हैं और उनमें खींचातानी हो रही है। यहाँ तक कि इस मतभेद को राजनीतिक स्वरूप भी दे दिया गया है और हम इस प्रश्न पर शांत चित्त और शांत मस्तिष्क से विचार करने के अयोग्य हो गए हैं। लेकिन इन सब रुकावटों के होते हुए भी यदि हम भारतीय राष्ट्रीयता के लक्ष्य तक पहुँचना और उसकी सिद्धि करना असंभव समझकर हिम्मत न हार बैठें, तो फिर हमारे लिए इस प्रश्न की किसी न किसी प्रकार की मीमांसा करना आवश्यक हो जाता है। देश में ऐसे आदमियों की संख्या कम नहीं है है जो उर्दू और हिंदी की अलग अलग और स्वतंत्र उन्नति और विकास के मार्ग में बाधक नहीं होना चाहते। उन्होंने यह मान लिया है कि आरंभ में इन दोनों के स्वरूपों में चाहे जो कुछ एकता और समानता रही हो, लेकिन फिर भी इस समय दोनों जिस रास्ते पर जा रही हैं उसे देखते हुए इन दोनों में मेल और एकता का होना असंभव ही है। प्रत्येक भाषा की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। उर्दू का फारसी और अरबी के साथ स्वाभाविक संबंध है और हिंदी का संस्कृत तथा प्राकृत के साथ उसी प्रकार का संबंध है। उनकी यह प्रवृत्ति हम किसी शक्ति से रोक नहीं सकते, फिर भी इन दोनों को आपस में मिलाने का प्रयत्न करके हम क्यों व्यर्थ इन दोनों को हानि पहुंचावें? यदि उर्दू और हिंदी दोनों अपने आप को अपने जन्म स्थान और प्रचार क्षेत्र तक ही परिमित रखे तो हमें इनकी प्राकृतिक वृद्धि और विकास के संबंध में कोई आपत्ति न हो। बंगला, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ आदि प्रांतीय भाषाओं के संबंध में हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं है। उन्हें अधिकार है कि वे अपने अंदर चाहे जितनी संस्कृत, अरबी या लैटिन आदि भर्ती चले, उन भाषाओं के लेखक आदि स्वयं ही इस बात का निर्णय कर सकते हैं, परंतु उर्दू और हिंदी की बात इन सबसे अलग है। यहाँ तो दोनों ही भारतवर्ष की राष्ट्रीय भाषा कहलाने का दावा करती हैं, परंतु वे अपने व्यक्तिगत रूप में राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकी और इसीलिए संयुक्त रूप में स्वयं ही उनका संयोग और मेल आरंभ हो गया और दोनों का वह सम्मिलित स्वरूप उत्पन्न हो गया जिसे हम बहुत ठीक तौर पर हिंदुस्तानी जबान कहते हैं। वास्तविक बात तो यह है कि भारतवर्ष की राष्ट्रीय भाषा न तो वह उर्दू ही हो सकता है जो अरबी और फारसी के अप्रचलित तथा अपरिचित शब्दों के भार से लदी रहती है, और न वह हिंदी ही हो सकती है जो संस्कृत के कठिन शब्दों से लदी हुई होती है। पृष्ठ संख्या 135। यदि इन दोनों भाषाओं के पक्षपाती और समर्थक आमने सामने खड़े होकर अपनी साहित्यिक भाषाओं में बातें करें तो शायद एक दूसरे का कुछ भी मतलब न समझ सके। हमारी राष्ट्रीय भाषा तो वही हो सकती है जिसका आधार सर्व सामान्य बोध गम्यता हो, जिसे सब लोग सहज में समझ सके। वह इस बात की क्यों परवाह करने लगी कि अमुक शब्द इसीलिए छोड़ दिया जाना चाहिए कि वह फारसी, अरबी अथवा संस्कृत का है। वह तो केवल यह मानदंड अपने सामने रखती है कि जनसाधारण यह शब्द समझ सकते हैं या नहीं, और जनसाधारण में हिंदू, मुसलमान, पंजाबी, बंगाली, महाराष्ट्रीय और गुजराती सभी सम्मिलित हैं। यदि कोई शब्द या मुहावरा या पारिभाषिक शब्द जनसाधारण में प्रचलित है तो फिर इस बात की परवाह नहीं करती कि वह कहाँ से निकला है और कहां से आया है, और यही हिंदुस्तानी है। और जिस प्रकार अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी, जापान की जापानी, ईरान की ईरानी और चीन की चीनी है, उसी प्रकार हिंदुस्तान की राष्ट्रीय भाषा को इसी तौर पर हिंदुस्तानी कहना केवल उचित ही नहीं बल्कि आवश्यक भी है। और अगर इस देश को हिंदुस्तान न कहकर केवल हिंद कहें तो इसकी भाषा को हिंदी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ की भाषा को उर्दू तो किसी प्रकार कहा ही नहीं जा सकता। जब तक हम हिंदुस्तान को उर्दूस्तान न कहने लगे, जो अब किसी प्रकार संभव ही नहीं है। प्राचीन काल के लोग यहाँ की भाषा को हिंदी ही कहते थे और अमीर खुसरू ने खालिक बारी की रचना करके हिंदुस्तानी की नींव रखी थी। इस ग्रंथ की रचना में कदाचित उसका यही अभिप्राय होगा कि जन साधारण की आवश्यकता के शब्द उन्हें दोनों ही रूपों में सिखलाए जाएं, जिसमें उन्हें अपने रोजमर्रा के कामों में सहूलियत हो जाए। अभी तक इस बात का निर्णय नहीं हो सका है कि उर्दू की सृष्टि कब और कहां हुई थी। जो हो, परंतु भारतवर्ष की राष्ट्रीय भाषा न तो उर्दू ही है और न हिंदी, बल्कि वह हिंदुस्तानी है जो सारे हिंदुस्तान में समझी जाती है और उसके बहुत बड़े भाग में बोली जाती है, लेकिन फिर भी लिखी कहीं नहीं जाती। और यदि कोई लिखने का प्रयत्न करता है तो उर्दू और हिंदी के साहित्यज्ञ उसे टाट बाहर कर देते हैं। वास्तव में उर्दू और हिंदी की उन्नति में जो बात बाधक है वह उनका वैशिष्ट प्रेमी है। हम चाहे उर्दू लिखें और चाहे हिंदी, जन साधारण के लिए नहीं लिखते बल्कि एक परिमित वर्ग के लिए लिखते हैं, और यही कारण है कि हमारी साहित्यिक रचनाएं जन साधारण को प्रिय नहीं होती। यह बात बिल्कुल ठीक है कि किसी देश में भी लिखने और बोलने की भाषाएं एक नहीं हुआ करती। जो अंग्रेजी हम किताबों और अखबारों में पढ़ते हैं वह कहीं बोली नहीं जाती। पढ़े लिखे लोग भी उस भाषा में बातचीत नहीं करते जिस भाषा में ग्रंथ और समाचार पत्र आदि लिखे जाते हैं, और जन साधारण की भाषा तो बिल्कुल अलग ही होती है। पृष्ठ संख्या 136। इंग्लैंड के हर एक पढ़े लिखे आदमी से यह आशा अवश्य की जाती है कि वह लिखी जाने वाली भाषा समझे और अवसर पड़ने पर उसका प्रयोग भी कर सके। यह बात हम हिंदुस्तान में भी चाहते हैं, परंतु आज क्या परिस्थिति है, हमारे हिंदी वाले इस बात पर तुले हुए हैं कि हम हिंदी से भिन्न भाषाओं के शब्दों को हिंदी में किसी तरह घुसने ही नहीं देंगे। उन्हें मनुष्य से तो प्रेम है परंतु आदमी से पूरी पूरी घृणा है। यद्यपि दरख्वास्त जन साधारण में भली भांति प्रचलित है परंतु फिर भी उनके यहाँ इसका प्रयोग वर्जित है। इसके स्थान पर वे प्रार्थना पत्र ही लिखना चाहते हैं। यद्यपि जन साधारण इसका मतलब बिल्कुल ही नहीं समझता, इस्तीफा को वे किसी तरह मंजूर नहीं कर सकते और इसके स्थान पर वे त्याग पत्र रखना चाहते हैं। हवाई जहाज चाहे कितना ही सुबोध क्यों न हो परंतु उन्हें वायुयान की सैर ही पसंद है। उर्दू वाले तो इस बात पर और भी अधिक लट्टू हैं। वे खुदा को तो मानते हैं परंतु ईश्वर को नहीं मानते। कुसूर तो वे बहुत से कर सकते हैं परंतु अपराध कभी नहीं कर सकते। खिदमत तो उन्हें बहुत पसंद है, सेवा उन्हें एक आंख भी नहीं भाती। इसी तरह हम लोगों ने उर्दू और हिंदी के दो अलग अलग कैंप बना लिए हैं, और मजाल नहीं कि एक कैंप का आदमी दूसरे कैंप में पैर भी रख सके। इस दृष्टि से हिंदी के मुकाबले में उर्दू में कहीं अधिक कड़ाई है। हिंदुस्तानी इस चार दीवारी को तोड़कर दोनों में मेलजोल पैदा कर देना चाहती है, जिसमें दोनों एक दूसरे के घर बिना किसी प्रकार के संकोच के आ जा सके, और वह भी सिर्फ मेहमान की हैसियत से नहीं बल्कि घर के आदमी की तरह। गारसन डी टासी के शब्दों में उर्दू और हिंदी के बीच में कोई ऐसी विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती जहां एक को विशेष रूप से हिंदी और दूसरे को उर्दू कहा जा सके। अंग्रेजी भाषा के भी अनेक रंग हैं, कहीं लैटिन और कहीं यूनानी शब्दों की अधिकता होती है, कहीं एंग्लो सैक्सन शब्दों की, परंतु है दोनों ही अंग्रेजी। इसी प्रकार हिंदी या उर्दू शब्दों के विभेद के कारण दो भिन्न भिन्न भाषाएं नहीं हो सकती। जो लोग भारतीय राष्ट्रीयता का स्वप्न देखते हैं और जो इस सांस्कृतिक एकता को दृढ़ करना चाहते हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि वे लोग हिंदुस्तानी का निमंत्रण ग्रहण करें, जो कोई नई भाषा नहीं है बल्कि उर्दू और हिंदी का राष्ट्रीय स्वरूप है। संयुक्त प्रांत के अपर प्राइमरी स्कूलों में चौथे दर्जे तक इसी मिश्रित भाषा अर्थात हिंदुस्तानी की रीडरें पढ़ाई जाती हैं। केवल उनकी लिपि अलग होती है, उनकी भाषा में कोई अंतर नहीं होता। इसमें शिक्षा विभाग का उद्देश्य यह होगा कि इस प्रकार विद्यार्थियों में बचपन में ही हिंदुस्तानी की नींव पड़ जाएगी और वे उर्दू तथा हिंदी के विशेष प्रचलित शब्दों से भली भांति परिचित हो जाएंगे और उन्हीं का प्रयोग करने लगेंगे। इसमें दूसरा लाभ यह भी है कि एक ही शिक्षक शिक्षा दे सकता है। इस समय भी यही व्यवस्था प्रचलित है, लेकिन हिंदी और उर्दू के पक्षपातियों की ओर से इसकी शिकायतें शुरू हो गई हैं कि इस मिश्रित भाषा की शिक्षा से विद्यार्थियों को कुछ भी साहित्यिक ज्ञान नहीं होने पाता और वे अपर प्राइमरी के बाद भी साधारण पुस्तकें तक नहीं समझते। पृष्ठ संख्या 137। इसी शिकायत को दूर करने के लिए इन रीडरों के अतिरिक्त अपर प्राइमरी दर्जों के लिए एक साहित्यिक रीडर भी नियत हुई है। हमारे मासिक पत्र, समाचार पत्र और पुस्तकें आदि विशुद्ध हिंदी में प्रकाशित होती हैं। इसीलिए जब तक उर्दू पढ़ने वाले लड़कों के पास फारसी और अरबी शब्दों का और हिंदी पढ़ने वाले लड़कों के पास संस्कृत शब्दों का यथेष्ट भंडार न हो, तब तक वे उर्दू या हिंदी की कोई पुस्तक नहीं समझ सकते। इस प्रकार बाल्यावस्था से ही हमारे यहाँ उर्दू और हिंदी का विभेद आरंभ हो जाता है। क्या इस विभेद को मिटाने का कोई उपाय नहीं है? जो लोग इस विभेद के पक्षपाती हैं, उनके पास अपने अपने दावे की दलीलें और तर्क भी मौजूद हैं। उदाहरण के लिए विशुद्ध हिंदी के पक्षपाती कहते हैं कि संस्कृत की ओर झुकने से हिंदी भाषा हिंदुस्तान की दूसरी भाषाओं के पास पहुंच जाती है। अपने विचार प्रकट करने के लिए उसे बने बनाए शब्द मिल जाते हैं, लिखावट में साहित्यिक रूप आ जाता है, आदि आदि। इसी तरह उर्दू का झंडा लेकर चलने वाले कहते हैं कि फारसी और अरबी उर्दू के पास आ जाती है। अपने विचार प्रकट करने के लिए उसे अरबों या विद्या संबंधी भंडार मिल जाता है, जिसे बढ़कर विद्या की भाषा और कोई नहीं है, और लेखन शैली में भी गंभीरता और शान आ जाती है, आदि आदि। इसीलिए क्यों ना इन दोनों को अपने अपने ढंग पर चलने दिया जाए और उन्हें आपस में मिलाकर क्यों दोनों के रास्तों में रुकावटें पैदा की जाएं? यदि सभी लोग इन तर्कों से सहमत हो जाएं, तो इसका अभिप्राय यही होगा कि हिंदुस्तान में कभी राष्ट्रीय भाषा की सृष्टि न हो सकेगी। इसीलिए हमें आवश्यक है कि जहाँ तक हो सके हम इस प्रकार की धारणाओं को दूर करके ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करें जिससे हम दिन पर दिन राष्ट्रीय भाषा के और भी अधिक समीप पहुंचते जाएं और संभव है कि 10-20 वर्षों में हमारा स्वप्न यथार्थता में परिणत हो जाए। हिंदुस्तान के हर एक सूबे में मुसलमानों की थोड़ी बहुत संख्या मौजूद ही है। संयुक्त प्रांत के सिवा और सूबों में मुसलमानों ने अपने अपने सूबे की भाषा अपना ली है। बंगाल का मुसलमान बंगला बोलता और लिखता है, गुजरात का गुजराती, मैसूर का कन्नड़ी, मद्रास का तमिल और पंजाब का पंजाबी आदि। यहाँ तक कि उसने अपने अपने सूबे की लिपि भी ग्रहण कर ली है। उर्दू लिपि और भाषा से यद्यपि उसका धार्मिक और सांस्कृतिक अनुराग हो सकता है, लेकिन नित्य प्रति के जीवन में उसे उर्दू की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि दूसरे सूबों के मुसलमान अपने अपने सूबे की भाषा निःसंकोच भाव से सीख सकते हैं और उसे यहाँ तक अपनी भी बना सकते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों की भाषा में नाम को भी कोई भेद नहीं रह जाता, तो फिर संयुक्त प्रांत और पंजाब के मुसलमान क्यों हिंदी से इतनी घृणा करते हैं? हमारे सूबे के देहातों में रहने वाले मुसलमान प्रायः देहातियों की भाषा ही बोलते हैं। जो बहुत से मुसलमान देहातों से आकर शहरों में आबाद हो गए हैं, वे भी अपने घरों में देहाती जबान ही बोलते हैं। पृष्ठ संख्या 138। बोलचाल की हिंदी समझने में न तो साधारण मुसलमानों को ही कोई कठिनता होती है और न बोलचाल की उर्दू समझने में साधारण हिंदुओं को ही। बोलचाल की हिंदी और उर्दू प्रायः एक सी ही है। हिंदी के जो शब्द साधारण पुस्तकों और समाचार पत्रों में व्यवहृत होते हैं और कभी कभी पंडितों के भाषणों में भी आ जाते हैं, उनकी संख्या 2000 से अधिक न होगी। इसी प्रकार फारसी के साधारण शब्द भी इससे अधिक न होंगे। क्या उर्दू के वर्तमान कोशों में 2000 हिंदी शब्द और हिंदी के कोशों में 2000 उर्दू के शब्द नहीं बढ़ाए जा सकते और इस प्रकार हम एक मिश्रित कोश की सृष्टि नहीं कर सकते? क्या हमारी स्मरण शक्ति पर यह भार असह्य होगा? हम अंग्रेजों के असंख्य शब्द याद कर सकते हैं और वह भी केवल एक अस्थाई आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, तो फिर क्या हम स्थाई उद्देश्य की सिद्धि के लिए थोड़े से और शब्द भी याद नहीं कर सकते? उर्दू और हिंदी भाषाओं में न तो अभी विस्तार ही है और न दृढ़ता, उनके शब्दों की संख्या परिमित है। प्रायः साधारण अभिप्राय प्रकट करने के लिए भी उपयुक्त शब्द नहीं मिलते। शब्दों की इस वृद्धि से यह शिकायत दूर हो सकती है। भारतवर्ष की सभी भाषाएं या तो प्रत्यक्ष रूप से और या अप्रत्यक्ष रूप से संस्कृत से निकली हैं। गुजराती, मराठी और बंगला बोला कि तो लिपियां भी देवनागरी से मिलती जुलती हैं। यद्यपि दक्षिणी भारत की भाषाओं की लिपियां बिल्कुल भिन्न हैं, परंतु फिर भी उनमें संस्कृत शब्दों की बहुत अधिकता है। अरबी और फारसी के शब्द भी सभी प्रांतीय भाषाओं में कुछ न कुछ मिलते हैं, परंतु उनमें संस्कृत शब्दों की उतनी अधिकता नहीं होती जितनी हिंदी में होती है। इसीलिए यह बात बिल्कुल ठीक है कि भारतवर्ष में ऐसी हिंदी बहुत सहज में स्वीकृत और प्रचलित हो सकती है जिसमें संस्कृत के शब्द अधिक हों। दूसरे प्रांतों के मुसलमान भी ऐसी हिंदी सहज में समझ सकते हैं, परंतु फारसी और अरबी के शब्दों से लदी हुई उर्दू भाषा के लिए संयुक्त प्रांत और पंजाब के नगरों और कस्बों तथा हैदराबाद के बड़े बड़े शहरों के सिवा और कोई क्षेत्र नहीं। मुसलमान संख्या में अवश्य 8 करोड़ हैं, लेकिन उर्दू बोलने वाले मुसलमान इसके 1/4 से अधिक न होंगे। ऐसी अवस्था में क्या उच्च कोटि की राष्ट्रीयता के विचार से इसकी आवश्यकता नहीं है कि उर्दू में कुछ आवश्यक सुधार और वृद्धि करके उसे हिंदी के साथ मिला लिया जाए, और हिंदी में भी इसी प्रकार की वृद्धि करके उसे उर्दू से मिला दिया जाए, और इस मिश्रित भाषा को इतना दृढ़ कर दिया जाए कि वह सारे भारतवर्ष में बोली समझी जा सके, और हमारे लेखक जो कुछ भी लिखे वह एक विशेष क्षेत्र के लिए न हो बल्कि सारे भारतवर्ष के लिए हो। सिंधी भाषा इस प्रकार के मिश्रण का बहुत अच्छा उदाहरण है। सिंधी भाषा की केवल लिपि अरबी है, परंतु उसमें हिंदी के सभी तत्व सम्मिलित कर लिए गए हैं, और शब्दों की दृष्टि से भी उसमें संस्कृत अरबी और फारसी का कुछ ऐसा सम्मिश्रण हो गया है कि कहीं खटक नहीं मालूम होती। हिंदुस्तानी के लिए भी कुछ इसी प्रकार के सम्मिश्रण की आवश्यकता है। पृष्ठ संख्या 139। जो लोग उर्दू और हिंदी को बिल्कुल अलग अलग रखना चाहते हैं, उनका यह कहना एक बहुत बड़ी सीमा तक ठीक है कि मिश्रित भाषा में किस्से, कहानियां और नाटक आदि तो लिखे जा सकते हैं, परंतु विज्ञान और साहित्य के उच्च विषय उसमें नहीं लिखे जा सकते। वहां तो विवश होकर फारसी और अरबी के शब्दों से भरी हुई उर्दू और संस्कृत के शब्दों से भरी हुई हिंदी का व्यवहार आवश्यक हो जाएगा। विज्ञान और विद्या संबंधी विषय लिखने के लिए सभी बड़ी आवश्यकता उपयुक्त पारिभाषिक शब्दों की होती है, और पारिभाषिक शब्दों के लिए हमें विवश होकर अरबी और संस्कृत के असीम शब्द भंडार से सहायता लेनी पड़ेगी। इस समय प्रत्येक प्रांतीय भाषा अपने लिए अलग अलग पारिभाषिक शब्द तैयार कर रही है। उर्दू में भी विज्ञान संबंधी पारिभाषिक शब्द बनाए गए हैं, और अभी यह क्रम चल रहा है। क्या यह बात कहीं अधिक उत्तम न होगी कि भिन्न भिन्न प्रांतीय सभाएं और संस्थाएं आपस में मिलकर परामर्श करें और एक दूसरे की सहायता से यह कठिन कार्य पूरा करें। इस समय सभी लोगों को अलग अलग बहुत कुछ परिश्रम, माथा पच्ची और व्यय करना पड़ रहा है, और उसमें बहुत कुछ बचत हो सकती है। हमारी समझ में तो यह आता है कि नए सिरे से पारिभाषिक शब्द बनाने की जगह कहीं अच्छा होगा कि अंग्रेजी के प्रचलित पारिभाषिक शब्दों में कुछ आवश्यक परिवर्तन करके उन्हीं को ग्रहण कर लिया जाए। पारिभाषिक शब्द केवल अंग्रेजी में ही प्रचलित नहीं है, बल्कि प्रायः सभी उन्नत भाषाओं में उनसे मिलते जुलते पारिभाषिक शब्द पाए जाते हैं। कहते हैं कि जापानियों ने भी इसी मार्ग का अवलंबन किया है, और मिस्र में थोड़े बहुत सुधार और परिवर्तन के साथ उन्हीं को ग्रहण किया गया है। यदि हमारी भाषा में बटन, लाल टेन और बाइसिकल सरीखे सैकड़ों विदेशी शब्द खप सकते हैं, तो फिर पारिभाषिक शब्दों को लेने में कौन सी बात बाधक हो सकती है। यदि प्रत्येक प्रांत ने अपने अलग अलग पारिभाषिक शब्द बना लिए हैं, तो फिर भारतवर्ष की कोई राष्ट्रीय विद्या और विज्ञान संबंधी भाषा न बन सकेगी। बंगला, मराठी, गुजराती और कन्नड़ी आदि भाषाएं संस्कृत की सहायता से यह कठिनता दूर कर सकती है। उर्दू भी अरबी और फारसी की सहायता से अपनी पारिभाषिक आवश्यकताएं पूरी कर सकती है, परंतु हमारे लिए ऐसे शब्द प्रचलित अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों से भी कहीं अधिक अपरिचित होंगे। आईने अकबरी ने हिंदू दर्शन, संगीत और गणित के लिए संस्कृत के प्रचलित पारिभाषिक शब्द ग्रहण करके एक अच्छा उदाहरण उपस्थित कर दिया है। इस्लामी दर्शन, धर्म शास्त्र आदि में से हम प्रचलित अरबी पारिभाषिक शब्द ग्रहण कर सकते हैं, जो विद्याएं पाश्चात्य देशों से अपने अपने पारिभाषिक शब्द लेकर आई हैं। यदि उन्हें भी हम उन शब्दों के सहित ग्रहण कर लें, तो यह बात हमारी ऐतिहासिक परंपरा से भिन्न न होगी। पृष्ठ संख्या 140। 44। यह कहा जा सकता है कि मिश्रित हिंदुस्तानी उतनी सरस और कोमल न होगी, परंतु सरसता और कोमलता का मानदंड सदा बदलता रहता है। कई साल पहले अचकन पर अंग्रेजी टोपी बेजोड़ और हास्यास्पद मालूम होती थी, लेकिन अब वह साधारणता सभी जगह दिखाई देती है। स्त्रियों के लिए लंबे लंबे सिर के बाल सौंदर्य का एक विशेष स्तंभ है, परंतु आजकल तराशे हुए बाल प्रायः पसंद किए जाते हैं। फिर किसी भाषा का मुख्य गुण उसकी सरसता ही नहीं है, बल्कि मुख्य गुण तो अभिप्राय प्रकट करने की शक्ति है। यदि हम सरसता और कोमलता की कुर्बानी करके भी अपनी राष्ट्रीय भाषा का क्षेत्र विस्तृत कर सकें, तो हमें इसमें संकोच नहीं होना चाहिए। जबकि हमारी राजनीतिक संसार में एक फेडरेशन या संघ की नींव डाली जा रही है, तब क्यों न हम साहित्यिक संसार में भी एक फेडरेशन या संघ की स्थापना करें, जिसमें एक प्रांतीय भाषा के प्रतिनिधि साल में एक बार एक सप्ताह के लिए किसी केंद्र में एकत्र होकर राष्ट्रीय भाषा के प्रश्न पर विचार विनिमय करें और अनुभव के प्रकाश में सामने आने वाली समस्याओं की मीमांसा करें। जब हमारे जीवन की प्रत्येक बात और प्रत्येक अंग में परिवर्तन हो रहे हैं और प्रायः हमारी इच्छा के विरुद्ध भी परिवर्तन हो रहे हैं, तो फिर भाषा के विषय में हम क्यों 100 वर्ष पहले के विचारों और दृष्टिकोणों पर अड़े रहें? अब वह अवसर आ गया है कि अखिल भारतीय हिंदुस्तानी भाषा और साहित्य की एक सभा या संस्था स्थापित की जाए, जिसका काम ऐसी हिंदुस्तानी भाषा की सृष्टि करना हो जो प्रत्येक प्रांत में प्रचलित हो। यहाँ तक बताने की यह आवश्यकता नहीं कि इस सभा या संस्था के कर्तव्य और उद्देश्य क्या होंगे। इसी सभा या संस्था का यह काम होगा कि वह अपना कार्यक्रम तैयार करे। हमारा तो यही निवेदन है कि अब इस काम में ज्यादा देर करने की गुंजाइश नहीं है।